ओम शांति। नहीं नहीं हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज सुबह आपने सभी ने परमात्मा से मिलन करने की एक विधि बहुत अच्छी सुनी कि आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ सहज सरल मिलन कैसे हो सकता है। अब तक के जो तीन सत्र आपने सुने योग से संबंधित सत्र है, लेकिन अभी का जो सत्र है वो जीवन की प्रैक्टिकल धारणाओं से कनेक्टेड है, या जिसको कहे कि इस ज्ञान की गहराई को समझने का एक सत्र है, जो परमात्मा ने दिव्य रहस्य खोला है कि ये समय का चक्र कैसे चलता है। क्योंकि समय के चक्र के विषय में अब तक इतना स्पष्ट और गहराई से किसी ने बताया नहीं है। परमात्मा जो समय को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने जो रहस्य उद्घाटन किया है वो आज हम बहुत स्पष्ट सुनेंगे। समय का चक्र नित्य चलता है। चक्र माना ही जो चलता रहता है, जिसकी आदि और अंत नहीं होता। इसीलिए इस चक्र को लीनियर प्रोसेस में नहीं देखा जाता। लीनियर माना स्टार्ट और एंड, चक्र माना जिसका कहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट कहे कहां एंड पॉइंट कहे ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये समय के चक्र में समय के लिए बहुत कुछ कहा गया है। दुनिया में समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। ये भी कहा गया है कि समय हमसे समय प्रति समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है। कैसे? जैसे कोई घटना घटती है, कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस समय समय हमसे एक प्रतिउत्तर चाहता है। अब वो प्रतिउत्तर कैसा देना है ये हमारे हाथ में है। पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, रिएक्शन दो या प्रोएक्टिव हो जाओ, ये हमारे ऊपर है। लेकिन देखा गया है कि जितना हम पॉजिटिव प्रतिउत्तर देते हैं उतना समय हमारे लिए सरल हो जाता है। जितना नेगेटिव देते हैं उतना वो सिचुएशन, समस्या, वो घटना कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, जिसके शिकार भी हम खुद बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं तो समय हमें मजबूर करता है परिवर्तन करने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है क्योंकि इच्छा है नहीं और समय की मांग है परिवर्तन करना, मजबूर हो जाते हैं तो नेचुरल है वो समय दर्दनाक हो जाता है। इसलिए कहा कि समय जो प्रतिउत्तर चाहता है वो प्रतिउत्तर कौन सा है? परिवर्तन। समय को कहा गया है नित्य परिवर्तनशील है, जो हर घड़ी परिवर्तन हो रहा है। आप पिछले 50 साल के अंदर ही देखो, आपके सामने सामने दुनिया के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। आज से 50 साल पहले लोग लैंडलाइन यूज करते थे फोन की, कंप्यूटर्स नहीं थे, ये 50 साल के अंदर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये बताता है कि समय नित्य परिवर्तनशील है। तो समय की जो मांग होती है हमसे, वो भी एक परिवर्तन की ही मांग होती है। इसलिए कहते हैं कि अब समय का पंछी उड़ता जा रहा है, इतनी तीव्र गति उसने पकड़ ली है कि ये परिवर्तन भी बहुत तीव्र गति से हम विजुलाइज कर रहे हैं। दुनिया में कहा जाता कि हमारी पीढ़ी सबसे लकी है जिसने वो समय भी देखा था जब कुछ नहीं था, लोग बड़े आराम से घूमते थे बिना फोन के बंधन से, और आज फोन ने ऐसा इंसान को बांध लिया है जो कई बार कई लोग कहते हैं इसे तो पहले मोबाइल नहीं था ना तो जिंदगी बहुत अच्छी थी, आज मोबाइल के बिना चलता भी नहीं है। लेकिन मोबाइल भी एक बंधन लगने लगा है, कहां भी बैठे हैं बजने लग जाता है ना। जो हमारी पीढ़ी ने देखा, आने वाले जो बच्चे हैं उसको अगर कहेंगे भाई हमारे समय में तो मोबाइल था ही नहीं, क्या सोचेंगे वो, ऐसा भी जमाना हो सकता है मोबाइल नहीं था तो आप लोग कैसे फंक्शन करते थे, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो इतना तीव्र परिवर्तन इस समय के अंदर चल रहा है, तो सोचो जिस गति से समय का परिवर्तन चल रहा है तो उसकी मांग हमसे भी इतनी ही तीव्र परिवर्तन की होगी। लेकिन जितना व्यक्ति अगर नेगेटिव होगा, समय उसके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। जितना व्यक्ति पॉजिटिव होगा उतना वो ऊंचाई को छुएगा। ये सीक्रेट है इस समय की। इसीलिए लेकिन आज मनुष्य अंदर से इतना कमजोर हो गया है, जरा कुछ होता नहीं कि गुस्सा आता है, बाद में सोचता है नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। तो नेगेटिव रिएक्शन बहुत ज्यादा निकल रहा है क्योंकि अंदर से इंसान कमजोर हो रहा है। पहले जो सहन शक्ति थी लोगों में आज कहां है, नहीं है, छोटी बात भी सहन नहीं, इतना इरिटेशन आ जाता है, इतना एंजाइटी उसके अंदर आ जाती है, इतना फियर है उसके अंदर, हर चीज में देखो नेगेटिविटी की जो रेट है कितना फास्ट बढ़ रही है। तो कहा कि ये समय एक चक्र में चलता है, और इस समय के चक्र में जितने भी चक्र है वो भी नित्य चलते रहते हैं। एक है ऋतुओं का चक्र, दिन और रात का चक्र, वो भी नित्य चलता रहता है। कौन सी घड़ी को शुरुआत की घड़ी कहेंगे 24 घंटे में से, क्या सुबह 4 बजे शुरू हुआ था, 10 बजे शुरू हुआ था, शाम को 7 बजे शुरू हुआ था, रात को 12 बजे शुरू हुआ था, नित्य चलता रहता है। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रात को 12 बजे ही चक्र शुरू हुआ था। ऋतुओं का चक्र नित्य चलता है, कब शुरू हुआ, क्या शीतकाल में शुरू हुआ, ग्रीष्म में शुरू हुआ, बरसात में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ मालूम नहीं। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र भी नित्य चलता है, और इसी तरह नेचर की साइकिल को देखो, पानी वेपोरेट होता है, बादल बनते बरसते हैं, फिर वो नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिलता है, ये नेचर की साइकिल भी कंटिन्यू चलती है। कौन सी घड़ी को आरंभ की घड़ी कहेंगे, इवेपोरेशन की या बरसात की। तो कुदरत के अंदर जितने भी बने हुए चक्र हैं नित्य चलते हैं। ये जरूर है कि हां, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कह दिया कि हाँ यहां से हम दूसरा आरंभ करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो हर चक्र को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र को देखो, चार अवस्था से गुजरता है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं का चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध फिर बचपन। तो काल चक्र में भी चार अवस्था है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, है ना। कलयुग के बाद क्या होगा, पुनः सतयुग आएगा। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य उसको नहीं बदलता है, ठीक इसी तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, कोई मनुष्य के हाथ का खेल नहीं है। कोई अगर सारी रात बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। इतना ग्रेजुअल चेंज है, बट चेंज इज कॉन्स्टेंट। ठीक इसी तरह ये घोर पापाचार की दुनिया भी सतयुग में बदलनी ही है, कोई चाहे या न चाहे। ये ग्रेजुअल चेंज है लेकिन बहुत फास्ट चेंज है। और एक बात चक्र की है कि हर चक्र की एक टाइम ड्यूरेशन है। जैसे दिन और रात के चक्र का टाइम ड्यूरेशन है 24 घंटे, उसी में वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं के टाइम ड्यूरेशन है एक साल, उसी के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ये काल चक्र का भी एक ड्यूरेशन है जिसको कहते हैं हम 5000 साल। अब कई लोग सोचते हैं 5000 साल कैसे कहते हैं, कहां लिखा हुआ है। मैंने पहले इसलिए आपको कहा ये समय के चक्र का सीक्रेट स्वयं ईश्वर के द्वारा बताया गया एक बहुत डीप सीक्रेट है, और इसलिए ये 5000 साल का चक्र वैसे तो हर जगह मिलेगा आपको लिखत, उसके समझ नहीं पाए बस इतना है लिखा हुआ है समझ नहीं पाए, बाकी ये चक्र है 5000 साल का। कई लोग कहते हैं शास्त्र में तो लाखों साल का तो एक एक युग लिखा है, अब 5000 साल का पूरा चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे कह सकते हैं। एक बात अगर मैं कहूं कि ये प्रश्न जो मनुष्य के मन में आता है, जवाब तो मैं जरूर दूंगी उसका, लेकिन अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि ये 24 घंटे कैसे आए, 60 सेकंड की एक मिनट बने, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह से 24 घंटे में इस चक्र को दिन और रात के चक्र को हमने बांट दिया, लेकिन ये 60 फिगर कहां से आया, कैसे कैलकुलेट किया, क्या 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, चलता ही था, घंटे कम हो जाते, दैट्स ऑल। 50 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, लेकिन आज तक किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि 60 फिगर कहां से आया। इसी तरह अगर ऋतुओं का चक्र देखो 365 दिन एक साल के अंदर कंप्लीट होता है, ये 365 कहां से आए, विज्ञान ने कहा, कि सृष्टि को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, और हमने स्वीकार कर लिया, कोई प्रश्न नहीं पूछा, और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर 12 मास का बन गया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो साल में कितने दिन है, साल में कितने दिन है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन, 354 दिन, तब जाकर के 3 साल के बाद एक अधिक मास आ जाता है। हाँ वही वही तो कह रही हूँ। हाँ तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन का साल है। अब सही कौन सा है, 365 या 354? किसी ने प्रश्न किया? नहीं किया। सारी दुनिया ने इंग्लिश कैलेंडर को मान्यता दे दी, सारा दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, और भारतवासी दोनों कैलेंडर लेके चल रहे हैं। त्योहार मुहूर्त जो है हिंदू कैलेंडर पर, और दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, दोनों कैलेंडर लेके, क्योंकि पता ही नहीं ना सही कौन सा है। एक कहते हैं 354 दिन लगता है सृष्टि को घूमने में, एक कहते हैं 365 दिन लगता है। कभी प्रश्न पूछा कि सही कौन सा है, एक बात कहो? नहीं पूछा। जबकि हिंदू कैलेंडर की एक्यूरेसी इतनी है कि जब अमावस्या और पूर्णमासी आती है तो पूरा ज्वार भाटा, समुद्र का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट। फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी, इंग्लिश कैलेंडर को। भावार्थ ये कि 5000 साल के लिए हमारे पास अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, 60 सेकंड कहां से आई उसका जवाब नहीं है, 24 घंटे कैसे आए मालूम नहीं है, 365 सही है 354 सही है ये मालूम नहीं, और 5000 साल के लिए प्रश्न करते हैं। अगर इनको स्वीकार कर सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं? वैसे हम आपको देंगे सबूत, सबूत मांगते हैं कई लोग हमसे। सबूत क्या है 5000 साल का? हिंदू कैलेंडर, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू शास्त्र में कहा हुआ है, महाभारत में ये बात आती है, अंतिम पर्व में, अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। और आज घर घर में क्या चलता है? चलता है महाभारत के नहीं चलता है? चलता है। और महाभारत समय को हुआ कितना साल हुआ? 5000 साल। गीता को कितना साल हुआ? महाभारत काल में गीता कही गई, तो गीता को अगर 5000 साल हुआ तो महाभारत को कितना हुआ? 5000 हो गया। घर घर में महाभारत चल रहा है, महाभारत काल पुनः आ गया। तो कहा ना, शास्त्रों में है, समझा नहीं है। और इसीलिए गीता में भगवान ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा जब महाभारत हो जाए धर्म चरम सीमा पर। तो आज, आज क्या है, अधर्म चरम सीमा पर है या नहीं है? गीता को मानते हैं, गीता की कहां मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं। गीता में जो बातें लिखी है उसको मानते हैं। सनातन के लिए बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, सनातन है, सनातन है, सनातन कहा किसको जाता है? और वो सनातन क्या हमारे जीवन की धारणाओं में है? नहीं है। सनातन को मानते हैं, सनातन की कहां मानते हैं, है ना? तो अधर्म चरम सीमा पर है। जो धर्म ग्लानी के लक्षण, शास्त्रों में बताए गए हैं वो प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म ग्रंथ में भी ये बात लिखी है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि अब हेवन की आवश्यकता है। एटलांटिस जिसके लिए वो कहते हैं वो पुनः आ रहा है। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर कहा जाए तो उसके पवित्र धर्म ग्रंथ में भी ये बात लिखी है कि कयामत के समय, कयामत का समय जो है 5000 साल में एक बार आता है, और उनके धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। तो 5000 हो गया। मायन संस्कृति में तो उनका कैलेंडर ही 5000 साल का है। तो 5000 साल का वर्णन हर जगह मिलेगा, लाखों साल का एक एक युग है ही नहीं, कहीं वर्णन ही नहीं, खाली हिंदू धर्म शास्त्र के सिवाय, वो भी कैलकुलेशन ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के हिसाब से और दिव्य वर्ष के हिसाब से किया, इसलिए लाखों वर्ष कह दिया। वो दिव्य वर्ष कितना होता है, कितने का होता है, किसी को पता नहीं, लेकिन हम उसी बात को पकड़ के चल रहे हैं। अब जैसे कहा जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर आता है, सपोज एक्स इज इक्वल टू 5000। उस बात पर हम आते हैं कि स्वास्तिक का हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है। स्वास्तिक का माना सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। भावार्थ ये काल चक्र सदा ही शुभ है, ये अशुभ है ही नहीं। स्वास्तिका में 4 भाग दिखाए हैं। ये समय का चक्र दर्शा रहा है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कहा ये सदा ही शुभ है, कैसे कलयुग में इतनी बुराई देख रहे हैं, इसको शुभ कैसे माने? कई लोगों के साथ इतना बुरा होता है, उसको शुभ कैसे माने? श्रीमद् भगवद गीता के सार में ये बात कही हुई है, हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तीनों काल अच्छे ही है। वो एक राजा की कहानी याद आती है कि एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने गया, उसकी अंगुली कट गई, तो मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसको जेल में बंद कर दिया, सारे सिपाहियों को कहा उसको ले जाओ और जेल में बंद करो, मेरा इतना खून बह रहा है। वो कहता है उंगली कट गई, और वो कहता है वो अच्छा हुआ, इतना निर्दयी था, जरा भी उसके अंदर मनुष्य के प्रति सहानुभूति नहीं है, जेल में डाल दिया। राजा अकेला हो गया, सैनिकों तो को भेज दिया, 2-4 सैनिक थे तो उनको तो भेज दिया, उसको जेल में बंद कर दिया। राजा अकेला हो गया, जंगल में भटक गया रास्ता, और रास्ता भटकने के बाद कुछ जंगली लोग बलि ढूंढ रहे थे, तो देखा इतना हुष्ट पुष्ट व्यक्ति है, राजा अपने सादे वेश में था, उसको पकड़ लिया, बलि चढ़ाने ले जा रहे थे, तो पंडित ने देखा भाई अंगुली तो कटी हुई है, जब अंगुली कटी हुई है तो खंडित बलि है। तब उसको महसूस हुआ, अरे मंत्री ने जो कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात, मेरी जान बच गई आज अंगुली के कारण ही। महल जाकर के उसने कहा भाई उसको छोड़ो, इसने जो कहा था वो तो बड़ा अर्थपूर्ण था, जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने अंगुली कटी तो जीवन बच गया।
उसको बुलाकर पूछा, चलो मेरा तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तेरे को जो जेल में डाला और तकलीफ दी उसमें क्या अच्छा था? यही तो अच्छा था क्योंकि आपके साथ मैं ही था। आप तो खंडित बलि करके छूट जाते थे, मेरी बलि चढ़ जानी थी, तो आपको गुस्सा आना ये भी तो कल्याणकारी है। जो सिपाहियों को मेरे साथ भेज दिया तो वो भी तो कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण है अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। निश्चिंत रहो, नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, है कि नहीं? तो समय का चक्र हमें ये सिखाता है, डोंट वरी बी हैप्पी। हर समय जो कुछ भी होता है रिएक्टिव बनने के बजाय ये सोचो इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, तो आप सदा खुश रहेंगे, मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन गीता के सार को तो लोगों ने घर में लगाया होगा, अर्थ समझा ही नहीं, ना उसको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अप्लाई करके देखा कि कैसे अच्छा है। इसलिए कहा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है। ये आज का जो सत्र है उसको अगर कदम कदम पर हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते जाए तो मेंटल टेंशन जैसी चीज कभी होगी नहीं। भाई अच्छा ही है तो टेंशन होगा क्या? जब उसको बुरा देखते हैं तब तो टेंशन होता है, अच्छा ही है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए ये स्वास्तिका को हम अच्छे से आज समझेंगे कि स्वास्तिका के ये चारों भाग एक समान है। ये चक्र नित्य चलता है, कहां से शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन इस स्वास्तिका का पहला पहर सतयुग को माना गया है। जैसे दिन का समय रात को 12 बजे के बाद हमने दूसरा दिन कह दिया और भोर को पहला पहर माना, दिन का 8 पहर में से पहला पहर माना उसको, ठीक इसी तरह सतयुग जो है ये इस समय के चक्र का पहला पहर है। सत्यता का युग, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं है, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर इस पोजीशन में अर्थात आशीर्वाद, जहां हर एक आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी। और इसलिए कहा जहां सत्यता का युग है उसको कहा सूर्यवंश। सूर्यवंश जब इस संसार में था, सतयुग का समय था, उस समय कहा जाता है कि परमात्मा ने, बाइबल में बहुत सुंदर लाइन आती है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। वो समय का वर्णन किया गया है कि वो समय कैसा था, तो परमात्मा ने जब ये सृष्टि का पहला पैर रचा था तब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी इमेज में बनाया था। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि जिस तरह परमात्मा संपूर्ण है तो उसकी प्रथम कृति संपूर्ण थी, जिसको कहा जाता है देवी देवताएं इस संसार में राज्य करते थे, जिसको हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में पूजते हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और श्री नारायण सतयुग के वासी थे, सूर्यवंशी थे, उसका प्रमाण नारायण के साथ शब्द जुड़ता है सत्य नारायण या सूर्य नारायण। वो उस राज्य के महाराजा महारानी थे, इसलिए आज भी लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है भारत भर में, कोई उसके ऊपर कलंक नहीं लगाए, कोई चरित्रहीनता की बात नहीं आती है। जैसे कृष्ण के ऊपर तो भाई मक्खन चोर है, वस्त्र चोरी किया, ये किया, वो किया, लीलाओं के रूप में उसको देख, लेकिन कलंक तो कहीं ना कहीं लगा दिया उसके चरित्र पर। श्री राम के ऊपर भी लगा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, लेकिन आज भी लोग टीका, जो अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल सका भगवान होते हुए, उसको मालूम था कि वो हिरण मायावी है तो पीछे दौड़ने का मतलब ही नहीं था, पत्नी को पहले संभालना था, कलंक तो लग गया ना, लेकिन लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं, संपूर्ण सत्यता, सूर्यवंशी इस भारत भूमि पर महाराजा महारानी के रूप में राज्य करते थे तो उनकी प्रजा कैसी होगी। सूर्यवंशी, देवी देवताएं, दिव्य गुणों से संपन्न, संपूर्ण स्थिति के अंदर आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थे और सतयुग, ये पूरा चक्र अगर 5000 साल का हो तो हर युग 1250 साल का हुआ, तो 1250 साल जिनका राज्य हो, 8 जन्म हो जहां, है ना। और इसीलिए दिखाया कि श्री नारायण का बचपन जो था ना वो श्री कृष्ण था, वो एक भजन गाते हैं, स्तुति गाते हैं भक्ति में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। श्री कृष्ण जिसको बचपन में कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, जब रासलीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, वही जब राज गद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहलाता है, वही तो वासुदेव है। तो श्री नारायण का बचपन इसीलिए कहीं पर दिखाया नहीं गया है, उसके बचपन के कोई स्वरूप नहीं दिखाए गए, और श्री कृष्ण के महाराजा का कोई स्वरूप नहीं दिखाया, द्वारकाधीश के रूप में उसको दिखाते हैं बस। लेकिन नारायण का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण का, और वही जब महाराजा बनता है, द्वारकाधीश से भी ज्यादा जब महाराजा बनता है, सारे विश्व पर जिसका राज्य था, उसको नाथ नारायण कहा। तो ये तो हुई सतयुग की महिमा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में उत्तम देव पुरुष, दिव्यता से संपन्न जो थे। जैसे जैसे समय बीता और सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता का समय, त्रेता माना थोड़ी त्रुटि जहां आई, 16 कला संपूर्ण से 14 कलाधारी बने, इसलिए श्री राम को 14 कला संपन्न दिखा, श्री कृष्ण को 16 कला, 16 फिगर जो है वो कंप्लीटनेस का फिगर है। इसीलिए कोई बात 100% एक्यूरेट होती है तो कहते हैं 16 आनी सच है, 16 से आगे कोई फिगर नहीं है कंप्लीटनेस का, 16 ही परफेक्शन। चंद्रमा संपूर्ण खिला हुआ होता है तो 16 कला संपन्न है। तो श्री कृष्ण सतयुग में और श्री राम 2 कला कम, त्रेता में थोड़ी त्रुटि आई, लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस, 16 कला संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा 2 दिन के बाद देखो तो भी ऐसा ही लगेगा, पूर्ण खिला हुआ ये है, पूर्णमासी जैसा ही लगता है, थोड़ा सा ऊपर से एक लकीर जितना कम होता है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं दिखाया जाता। इसलिए श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते हैं। तो श्री राम और श्री सीता का राज्य आया, इसीलिए सतयुग में 8 जन्म, तो 8ों जन्म इतने श्रेष्ठ थे श्री कृष्ण के, इसीलिए श्री कृष्ण के साथ कहते हैं श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। 8ों जन्म जिसके इतने श्रेष्ठ थे, सतयुग का राज्य भाग्य जिसने भोगा हो कितना श्रेष्ठ माना जाता है। 8ों जन्म की जयंती मनाया जाता है जन्माष्टमी पर, फिर त्रेता में नौवे नंबर पर श्री राम आते हैं, इसलिए राम नवमी हो गए। हर चीज के पीछे अर्थ है, लेकिन भक्ति में किसी ने हमें ये रहस्य स्पष्ट नहीं किया कि जन्म अष्टमी क्यों कहा, राम नवमी क्यों कहा, राधा अष्टमी क्यों कहते हैं। राधा के भी तो 8 जन्म हुए श्री कृष्ण के साथ, इसलिए राधा अष्टमी होती है। लेकिन नौवे नंबर पर जब श्री राम आए तो कहा राम नवमी। नौवा नंबर भी अच्छा ही था, मर्यादा पुरुषोत्तम। दो कला थोड़ी सी कम हुई तो कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा। आज भी जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं कि चलो सतयुग जितनी संपूर्णता तो नहीं स्थापन कर सकते, श्री राम राज्य जैसा तो हम राज्य लाए, जहां के लिए भी कहा जाता है सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, है ना, सुखी था सारा संसार। तो राम राज्य जैसा भी चाहना रखी, इसलिए श्री कृष्ण को या श्री नारायण को सूर्यवंशी कहा। लेकिन श्री राम जहां आए त्रेता युग में, तो त्रेता युग को कहा जाता चंद्रवंश। श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, लेकिन जहां से श्री राम आए दूसरा युग आरंभ हुआ चंद्रवंश, इसलिए श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री राम चंद्र, चंद्रवंश आरंभ हो गया। उसके पूर्वज सूर्यवंशी, लेकिन श्री राम को सूर्यवंशी नहीं कहा गया, चंद्रवंशी हो गया। जहां से धीरे धीरे कलाएं कम होने लगी, और कलाएं कम होते होते द्वापर युग जैसे आता है, आधी कला कम हो जाती है, आधा समय बीत गया, 5000 में से 2500 साल बीत गया, 2500 साल बीतने के बाद त्रेता अंत तक का पॉपुलेशन हो गया 33 करोड़ देवी देवताएं। इसलिए दिखाते हैं शास्त्र के अंदर देवताएं कितने थे, 33 कोटि देवताएं थे, है ना, 33 करोड़ देवता। कितनी एक्यूरेट बातें हैं, लेकिन कहा ना हमने कभी समझा ही नहीं, कितना सुंदर है ये रहस्य। द्वापर जैसे आया तो परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी तीव्र हुई, इसीलिए साइंस में लॉ ऑफ एंट्रोपी आता है, और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। मकान नया होता है, खंडर अपने आप होता है, खंडर बनाया नहीं जाता है, मकान हमेशा नया ही बताया जाता है, खंडर अपने आप हो जाता है। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। इसीलिए जो पढ़ाया गया लॉ ऑफ डार्विन थियरी जो पढ़ाई गई, उसमें कहा हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से मनुष्य और सभ्य से सभ्य बने, लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से एकदम गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज, और ये कहते हैं अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड बने, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। या तो वो सही है या ये सही है। विवेक ये कहता है लॉ ऑफ एंट्रोपी सही है, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज देवताएं थे, सिविलाइज्ड, मर्यादा पुरुषोत्तम, वहां से असभ्य बने हैं। इसीलिए जब हमारे पूर्वज देवताएं थे, ये भारत के शास्त्र कहते हैं, ये हमारी संस्कृति कहती है, वहां से डिसऑर्गेनाइज्ड हम बने। इसीलिए मॉडर्न साइंस ने डार्विन की थियरी को एकदम गलत सिद्ध करके उसको पढ़ाना भी बंद कर दिया कि ये एक हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंट्रोपी एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाइट टू डाउनवर्ड्स, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। न्यूटन लॉ कहता है ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, पानी को चढ़ाना पड़ता है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम सिविलाइज्ड से अनसिविलाइज्ड अपने आप बन गए। समय के अंतराल में दुनिया गिरती गई और गिरती जा रही है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कितनी गिरावट आ रही है वैल्यूज में, कितनी गिरावट आ रही है सभ्यता में। आजकल के बच्चों को एक सभ्यता नहीं मालूम कि बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, ये भी सभ्यता नहीं है। परिवार में रहना कैसे सभ्यता नहीं मालूम है। देखते हैं ना आप तो दुनिया में, देखते हैं नहीं देखते हैं हा? यहां अच्छा लगा 3 दिन, यहां सभ्यता महसूस हुई, एक मॉडल है सतयुगी दुनिया का, महसूस किया आपने कि सचमुच नई सृष्टि की सर्जना का कार्य ईश्वर ने आरंभ कर दिया है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, हर चीज में एक मर्यादा, उठने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, कपड़े की मर्यादा, हर चीज की मर्यादा है। यहां पर पुनः उस संस्कृति की ओर जाना ही है हमें। समय ले जाता है, जो स्वेच्छा से चलते हैं वो खुशी से चलते हैं, जो मजबूरी से चलेंगे वो दर्द महसूस करेंगे। तो इसीलिए कहा लॉ ऑफ एंट्रोपी, चंद्रमा संपूर्ण खिला हुआ है, धीरे 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 अमावस्या की ओर उसको जाना ही है, ये यात्रा है उसकी। और अमावस्या से फिर चंद्रमा संपूर्णता की ओर भी जाता है। ऐसे सूर्यवंशी थे, वहां से चंद्रवंशी, धीरे धीरे द्वापर में आए वैश्यवंशी और शूद्रवंशी, और फिर वापस सूर्यवंशी की ओर जाना ही है। ये एक यात्रा है, बहुत सुंदर। रामायण, रामायण जब कहते हैं, रामायण का शब्द ही है राम आयण, द जर्नी ऑफ आयण माना जर्नी, यात्रा, द जर्नी ऑफ राम। वास्तव में एक राम की रामायण नहीं थी, हम सब की रामायण है, क्योंकि आत्मा राम की एक जर्नी है फ्रॉम सतयुग टू कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग की ओर जाना ही है। ये यात्रा है रामायण, राम की यात्रा है। आत्मा राम, हर एक यहां बैठा हुआ आत्मा राम है, आत्मा राम की एक यात्रा है, आयन है। तो इसलिए कहा कि चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई चाहे या ना चाहे। ठीक इसी तरह सतयुग त्रेता, त्रेता से फिर द्वापर, द्वापुर शब्द को देखो, जहां से दो पुर आरंभ हुए। सत्यता माना एकता, उसमें थोड़ी त्रुटि आई, लेकिन द्वापर युग आते दो पुर आरंभ हो गए, सत्य के साथ असत्य भी मिक्स होने लगा, द्वैत भावना आरंभ हो गई। और जैसे ही द्वैत भावना आई तो स्वास्तिका का हाथ, जो आशीर्वाद की पोजीशन में था सतयुग में, धीरे धीरे राइट हैंड पर नीचे आया। राइट हैंड माना राइटियसनेस ही था, लेकिन द्वापर युग में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाता है, और लेफ्ट हैंड माना, और वो पोजीशन भी बदल गई, कहां ये पोजीशन, कहां ये पोजीशन। ये पोजीशन माना मांगना, मांगना आरंभ किया। तो जो देवी देवताएं होकर के गए थे उनकी स्मृति ताजा थी। जैसे आज के युग में साईं बाबा का मंदिर हम देखेंगे, कई जो संत हो गए उनके भी मंदिर बनने लगे। अगर पूछा जाए भाई ये संत तो हमारे युग के हो गए, आज से 500 साल पूर्व हुए, उनके मंदिर क्यों बना रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, हमसे तो श्रेष्ठ थे, हमसे तो श्रेष्ठ थे ना। तो द्वापर युग में जो लोग आए उनसे श्रेष्ठ त्रेता युग वाले और सतयुग वाले थे या नहीं थे। तो उनकी स्मृति ताजा होने के कारण उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करना शुरू किया। तो पूज्य अवस्था से पुजारी अवस्था में आ गए, और जैसे ही पुजारी अवस्था में आए तो मांगना तो शुरू करेंगे। कहां से मांगेंगे, भगवान से ही मांगेंगे। परमात्मा का परिचय किसी के पास नहीं था, परमात्मा को सब भूल चुके थे, लेकिन जो देवी देवताएं होकर के गए उसको ही भगवान मान लिया और भगवान मान करके उनकी पूजा आरंभ कर दी, उनसे मांगना शुरू किया, है ना। इसलिए आज कितने देवी देवताओं के मंदिर देखेंगे, हर एक कुल के भी देवता अपना होता है, कुल की देवी अपनी होती है, होते है कि नहीं है। भारत के अंदर कितने देवी देवताओं के मंदिर है, असंख्य, गिनती भी नहीं होते। और इस तरह से इस युग में भक्ति आरंभ होती है, पूजा पाठ आरंभ होता है और मंदिर बनाना शुरू किया। आधी कला कम हो गया, आधा समय बीत गया तो आधी कला कम हो गई, खाले 8 कलाधारी बन गए। और इसलिए जैसे ही इस युग में आए तो इस युग में अंधश्रद्धा की ओर आगे बढ़ने लगे लोग। तो अंधश्रद्धा से बचाने के लिए विश्व के अंदर कुछ धर्म पिताओं का आगमन होता है। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये तीनों का एनलाइटनमेंट भारत से ही होता है। महात्मा बुद्ध भी बौद्ध गया में जब बैठे थे वहां ही उसको एनलाइटनमेंट मिली। इब्राहिम भी जब भारत में थे और फिर यहां से गए, इसीलिए उसकी दो पत्नी दिखाई, एक सरस और दूसरी एक मुस्लिम। तो एक हिंदू पत्नी दिखाई, एक मुस्लिम पत्नी दिखाई उसके भी, क्योंकि यहां से गया था, एनलाइटनमेंट मिला। तो इस्लाम धर्म की स्थापना की उसने। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और क्रिश्चियन धर्म, कहा जाता जीसस क्राइस्ट के जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल की आयु की उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर थे। एक किताब मेरे हाथ में आई, जीसस लिव्ड इन इंडिया, तो वो किताब जब पढ़ी तो पता चला कि भारत भ्रमण पर ये 20 साल रहे और यहां से जीसस को क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की प्रेरणा प्राप्त होती है। उसका जो एनलाइटनमेंट होता है यहां से होता है और फिर यहां से वापस वो 33 साल की आयु में जाता है और जो यहां सीखा वो उसने वहां सिखाना शुरू किया। लोगों को जाकर कहा, क्योंकि जब भारत भ्रमण पर थे कई ऋषि मुनियों से मिलना हुआ द्वापर युग में, और वो ऋषि मुनियों के साथ जब ज्ञान चर्चा किया तो उस समय लोगों ने उसके साथ गीता का चर्चा किया, लेकिन उस समय गीता नाम से नहीं था, द्वापर में उसका नाम था कृष्ण नीति। तो कृष्ण नीति से चर्चा की गई। वो यहां से जब वापस गया, जब इतना प्रभावित हो गया कृष्ण नीति से, वापस गया कि मुझे अपने समाज वाले को जाकर के ये बात सुनानी है, सिखानी है। तो जब वापस जाते हैं और लोगों से कहा कि मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं, जब वहां के लोगों को प्रोनाउंस करना नहीं आया तो कृष्ण नीति को कह दिया क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी। तो कृष्ण नीति से ही क्रिश्चियनिटी आती है। इसलिए गीता की जो बातें हैं वो आपको बाइबल में बहुत मिलेगी। तब कहा कि तीनों महान आत्माएं भारत से ही अपना एनलाइटनमेंट लेकर के जाते हैं अपने अपने स्थानों पर, और वहां जाकर के वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। चाहा तो यही, क्योंकि सारे विश्व को बचाना था, अंधश्रद्धा में ये विश्व का बेड़ा गर्क न हो और भारत में भक्ति मार्ग आरंभ होता है। कई ऋषि मुनियों ने लोगों को पाप कर्म से बचाना चाहो, कई प्रकार के शास्त्र की रचना की और अनेक प्रकार की शास्त्रों की रचना करते हुए लोगों को अंधश्रद्धा में जाने नहीं दिया। ये द्वापर युग में सब हुआ। लेकिन अफसोस ये है जो इन्होंने कहा, सभी मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं, लेकिन इब्राहिम की नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। क्राइस्ट को मानते हैं, क्राइस्ट की नहीं मानते हैं। जैसे भारतवासी गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं, है ना। तो इब्राहिम ने क्या बताया, जीवन के कुछ सिद्धांत बताए, जीवन जीने के सिद्धांत। लेकिन अफसोस वहां के लोगों ने उस बात को समझा नहीं। इसीलिए आज इतना गलत तरीके से वो उस धर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा, किस पर प्रचार किया? महात्मा बुद्ध ने कोई मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन उसने देखा कि मनुष्य के कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, तो उसने कर्म पर प्रीच किया। धर्म पद के अंदर कर्म फिलॉसफी को उसने बहुत महत्व दिया। और इसीलिए कहा दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है, कर्म अच्छे करो। ये प्रचार महात्मा बुद्ध ने किया, दया, कंपैशन, मर्सी और कर्म अच्छे करो। लेकिन अफसोस उसी दुनिया में, अगर फार ईस्ट में आप चले जाओ, जगह जगह आपको महात्मा बुद्ध के मंदिर मिलेंगे, चाइना में, जापान में, है ना। लेकिन चाइना में आप जाओ, हांगकांग में जब जाओ, तो वहां के लोगों के कर्म कैसे हैं? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है। और आज तो वो स्थिति हो गई, मनुष्य के बच्चे के प्रति भी दया भाव, करुणा भाव नहीं रहा। उन्हीं बच्चों को भी वो भोजन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, है ना। $2,000 में एक बच्चा बेचते हैं और उसी को पका देते हैं, फ्राई कर देते हैं, ओवन में बेक कर देते हैं, उसको खाते हैं। इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे, क्राइस्ट ने क्या देखा कि मनुष्य में झूठ व्याप्त होने लगा है, असत्य और नफरत। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो उनकी पॉलिसी है, तो नफरत और असत्यता उनके जीवन में आ गई। तब उन्होंने प्रचार किया सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस वहां के लोगों ने इस बात को माना नहीं। आज भी असत्यता का सहारा लेकर के और नफरत फैलाना, ये उनके अंदर आ गया। तब का क्राइस्ट को मानते, क्राइस्ट की नहीं मानते हैं। और जो प्रेम और सत्यता की बात करते थे उनको ही क्रॉस पर चढ़ा दिया। कितना नफरत पूर्ण व्यवहार किया सारी दुनिया जानती है। और इस तरह से द्वापर युग भी बीता और कलयुग आया, जहां लेफ्ट हैंड ऊपर उठता है, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कलयुग, कलह क्लेश वाला युग, कलयुग पुर्जे का युग हो गया। अधर्म अपनी चरम सीमा पर, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार, ये सब चीजों की अति कलयुग के अंदर हो जाती है, चरम सीमा को प्राप्त हो जाती है। ऐसी जब दुनिया आ जाती है तो इस दुनिया को कहा जाता है दूसरे शब्द में रावण राज्य। रावण माना विकृति, 10-30 कोई होते नहीं, विकृति का राज्य, साम्राज्य। रावण के लिए कहा जाता है कि रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था, पूरी सोने की लंका थी। रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं था और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था। खूब शिव की भक्ति करता था, शिव भक्त था, तो ये चारों चीजें रावण के अंदर थी। शास्त्रों का ज्ञाता माना ज्ञानी था, ज्ञानी, शक्तिशाली, धनवान और भक्ति बहुत भरपूर थी। लेकिन फिर भी उसके राज्य का सर्वनाश क्यों हुआ? दो बातों की कमी थी। कौन सी दो बातों की कमी थी? अहंकार चरम सीमा पर था, अनैतिकता, और दूसरा अहंकार चरम सीमा पर था, अहंकार और अनैतिकता। सीता को पराई स्त्री पर दृष्टि डालना तो अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता और अहंकार चरम सीमा पर, ये दो कमी थी उसके अंदर। आज की दुनिया को भी हम रावण राज्य कहते हैं। क्यों रावण राज्य कहते हैं? क्योंकि आज अगर मनुष्य को देखा जाए, साइंस अपनी चरम सीमा पर है, मनुष्य ज्ञानी है, महाज्ञानी है। दूसरे युगों से अगर देखा जाए तो कलयुग के अंदर ज्ञान की कोई कमी है नहीं, हर विषय का ज्ञान है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मिसाइल पावर है उसके पास, एक जगह पर बैठकर बटन दबाकर दुनिया को तबाह कर सकता है। अभी युद्ध के समय पता चला कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया था उससे 33 टाइम स्ट्रॉन्गर ऐसे मिसाइल है रशिया के पास, अमेरिका के पास। अब आप सोचो, एक जगह मैंने पढ़ा कि इस दुनिया को, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा कि इस दुनिया को 35 बार संपूर्ण खत्म कर सके, इतने मिसाइल्स भरे पड़े हैं। अब सोचो 35 बार खत्म कर सके। अब ये सारे मिसाइल्स रखने के लिए तो नहीं है, है ना? बटन दबाने की देरी पर है, कंप्यूटराइज है। एक पागल व्यक्ति का काम है जाकर के बटन दबा देगा, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, बस यही तो होगा, यही तो होगा ना? और आज साइकिक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं था, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। तो आज की दुनिया में भक्ति की कमी है, गली गली में मंदिर है, विशेष दिन नवरात्रि होते, लोग पैदल चल करके भक्ति, हम देखो कोई गुलाट मार मार के चल रहा है, पहुंच रहा है, कोई कहां कैसे पहुंच रहा है, कोई कैसे, भक्ति की कोई कमी है? और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, रात्रि के धन की कोई कमी है? धन की कमी है क्या दुनिया के अंदर? कागज की नोट है, छपाते जाओ, छपती जाती है, लोगों का सैलरी बढ़ता, लाखों में तो माने मंथली सैलरी है लोगों की, तो धन की कमी है क्या? ईयरली इनकम किसी किसी के करोड़ में जाती है। तो ज्ञान भी है, अर्थ भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है, तो ये रावण राज्य नहीं तो क्या है? और जो रावण में दो कमी थी ना, वो आज के युग में भी है। अहंकार चरम सीमा पर पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। आज एक छोटे बच्चे को आप किसी बात के लिए मना करके देखो, उसके हाथ से खाली मोबाइल छीन लो, देखो फिर क्या करता है, क्या करता है? उसका ईगो थोड़ा हर्ट करके देखो, एक बच्चे का क्या करेगा? माँ बाप को धमकी देगा, माँ बाप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये संस्कार है आज के, ईगो चरम सीमा पर है। और अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता, ये भी आज के युग का श्राप है, रावण का श्राप है, है कि नहीं है? तो ये रावण राज्य नहीं तो क्या है? इसलिए कहा, मनुष्य की लाइफस्टाइल देखो, मनुष्य की अंदर धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी, शक्तिशाली होते हुए भी आज गलत दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। भौतिकता, अनैतिकता,
सब कुछ होने के बाद भी आज मनुष्य किस गति को प्राप्त कर रहा है। तो ये रावण राज्य नहीं तो क्या कहेंगे, राम राज्य थोड़ी कहेंगे इसको। इसलिए तो राम राज्य की कल्पना करते हैं इंसान कि बस अभी रावण राज्य से बहुत दुखी हो गए, अब राम राज्य चाहिए, है ना। तो इसीलिए रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा देखो तो क्या जैसे सोने की लंका चमक रही है। सोने की लंका नहीं दिख रही है, सोने की लंका चमकती है। आज हर इंसान बंधन में अपने आप को महसूस करता है, किसी को मन का बंधन है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, छूट नहीं सकता है उसमें से। किसी का स्वभाव का बंधन है, बुरे स्वभाव के वशीभूत हो, तो हर एक का जीवन जकड़ा हुआ है बुराई में, ऐसा जकड़ा हुआ है। और तब कई बार कई लोग कहते हैं अरे कलयुग तो भी बच्चा है, अरे बच्चा नहीं है थोड़ा सा बचा है, इससे आगे भी कलयुग देखना चाहते हैं क्या, इच्छा है क्या। इतनी जब अति में चला गया है, इसके बाद क्या हो सकता, अति का तो अंत होता है ना, और अंत नहीं आद को ले आता है। तो अब कलयुग बच्चा नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहो कि अभी तो कलयुग को 40,000 साल पड़े हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा बचा है, 40 साल भी निकाल दे तो भी बहुत अच्छा है ना। तो अब बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है। वो किसी कवि के गीत की लाइन याद आती है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, क्या हो गया, सतयुग के देवताएं कहां थे, हमारे पूर्वज कहां थे और हम कहां आ गए। तब मैंने कहा कि हमारी पीढ़ी ने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। जो आज की पीढ़ी है वो तो समझते हैं कि भाई, और बहुत जल्दी इसलिए उब रहे हैं, जिस तरह से मानसिक रीति से इंसान कमजोर होता जा रहा है और मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हो रहा है, ये बताता है कि अब ये दुनिया ज्यादा समय चलने वाली है क्या, नहीं चल सकती है। वैज्ञानिक भी अभी तो कहने लगे हैं, जिस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है, ये सारे जो लक्षण है, जिस तरह ओजोन लेयर्स के अंदर बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये 40,000 चलने वाले स्थिति ही नहीं है अभी दुनिया की। लोग चिंतित हो रहे हैं कि दुनिया का क्या होगा, कैसे रिवर्स करे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे रिवर्स किया, ये किसी को मालूम नहीं कितनी बुरी हालत हमने कर दी है। जिस तरह से इरोजन, पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं शहरों को बसाने के लिए। मैं एक बार देहरादून गई थी, वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा प्रोग्राम था, तो वो फॉरेस्ट की सारी हिस्ट्री मुझे बता रहे थे कि किस तरह से फॉरेस्ट बने हैं और कितने एक पेड़ कितने साल का है वो बता रहे थे। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, ये 800 करोड़ को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का सोर्स ही कट रहा है, तो कितने फॉरेस्ट होने चाहिए तब जाकर के ये लोगों को इतना ऑक्सीजन मिले। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये पॉपुलेशन को सरवाइव होने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ कि अभी भारत में कितने फॉरेस्ट है, प्रैक्टिकली 140 करोड़ लोगों को 33% अगर फॉरेस्ट चाहिए तो कितने परसेंट फॉरेस्ट है। तब उन्होंने मेरे को बताया ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11% और ये भी 9% हो गया, तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा बताओ,
11 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? पेड़ डाले नहीं जा रहे हैं। लोग भाई पृथ्वी बचाओ, ये करो, पेड़ उगाओ, ये करो, लेकिन कहाँ उगा रहे हैं? एक नारा हो गया है, प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, लोग लगा भी रहे हैं तो पानी कहाँ है? कौन डालने जाएगा पानी? पिछले साल यहाँ 10 लाख पेड़ लगाए हैं आसपास में, मेजॉरिटी सूख गए, क्योंकि राजस्थान तो मरुभूमि है, यहाँ पानी ही नहीं है, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, तो पेड़ों को डालने के लिए कहाँ से पानी है? तो इसलिए 33% फॉरेस्ट, लोगों का आज इतना अस्थमा, ब्रेथलेसनेस क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है। और कहा जाता है, साइंस ये कहता है कि सुबह में तो पेड़ पौधे फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सूर्य उदय के साथ ही भोर होते ही फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन जैसे 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 सूर्यास्त होता है तो साइकिल चेंज होती है, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन लेने लगता है। तो रात्रि को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में लगभग 0 तक आ जाता है, इसलिए लोग ब्रेथलेस रात में हो जाते हैं। जो मैक्सिमम हार्ट अटैक आते हैं, साइलेंट अटैक जो दुनिया में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में आते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं है, खत्म होता जा रहा है। इसलिए कई लोगों ने घरों में वो पेड़ लगा, भाई जो 24 घंटा देते हैं ऑक्सीजन, वो लगाना चालू किया। भारत में इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा की, कि उस बहाने से भी लोग उसको काटे नहीं, 24 घंटा ऑक्सीजन वही एक सिर्फ देखता है। पीपल का पेड़ देता है, तुलसी देता है, ये कुछ पेड़ है जो देते हैं, लेकिन उसका ज्ञान लोगों को कहाँ है? अवेयरनेस ही नहीं है, पेड़ कटते जा रहे हैं। और इसलिए बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जो डिजास्टर्स है, ये सब चीजें होने से, जो साइंटिफिक प्रूफ है कि बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप, अभी थाईलैंड में, म्यांमार में देखा 7.8 का जो भूकंप आया वहां पर, बड़े बड़े पैमाने पर अभी आने की आगाही है दुनिया के अंदर। इतना ही नहीं, लेकिन कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सुनामी आने का भी खतरा है, क्योंकि ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है, बड़े से बड़े चक्रवात तूफान आ रहे हैं। ये नेचुरल डिजास्टर्स भी संसार के अंदर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर, जब धर्म ग्लानि का समय है, रावण राज्य उसको जब कहते, इसलिए हर साल रावण को जलाते हैं, लेकिन हमेशा किसी की एफिजी जब जलाई जाती है, दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं, ऐसा मान। रावण हमारा दुश्मन कैसे हुआ? कभी हमने पूछा किसी को, भाई हम लोग क्यों जला रहे हैं, हम क्यों जला रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो हमारा दुश्मन है। अनैतिकता, अहंकार, हम ये जो सारे दुर्गुण है बढ़ रहे हैं, मना रावण हर साल बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हर साल उसकी एफिजी बनाकर हम जला रहे हैं। लेकिन उस रावण को खत्म करने का, हमारे अपने जीवन से खत्म करने का आप कभी सोचते नहीं है। ऐसे समय पर जो भगवान ने वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, इस संसार में मैं अवतरित होता हूं, अवतरित होकर के एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं और समय की पुकार बताता हूं कि समय क्या कह रहा है। समय की पुकार भगवान ने सुनाई कि योगी बनो, पवित्र बनो, आत्मशुद्धिकरण करो, आत्मशुद्धिकरण करो, जीवन को संयम में ले आओ। अभी रिवर्स करना है, अगर उस पूर्वजों की तरह अपने जीवन को सतयुग की ओर अगर ले जाना है, परिवर्तन बहुत फास्ट चल रहा है, अगर हमने अपने परिवर्तन को नहीं अपनाया, सही दिशा नहीं दी अपने जीवन को, तो क्या होगा?
समय मजबूर करेगा और वो परिवर्तन दर्दनाक होगा। इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी ये करना पड़ रहा है, वो दर्दनाक हो जाएगा। इसीलिए आत्म शुद्धिकरण की आवश्यकता है। योगी बनो, पवित्र बनो, ये भगवान ने आकर के संदेश दिया। लेकिन जब ये संदेश हम देते हैं तो लोग क्या कहते, अरे बहन जी सारी दुनिया पवित्र हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अब दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो चलती रहेगी, सारे लोग थोड़ी बनने वाले हैं। आप तो बनो, इनिशिएटिव तो लो। भगवान के मददगार बनने में अगर सौभाग्य मिल रहा है, यही समय है। कलयुग के अंदर सारी बुराई है, एक अच्छाई है खाली। कलयुग को एक वरदान है बस, बाकी सारी बुराई है। कौन सा वरदान है? यही युग है जब भगवान भी आते हैं। न सतयुग में आते, न त्रेता में आते, न द्वापर में आते, सिर्फ कलयुग के अंतिम समय पर ही आते हैं। यदा या, जो उसने वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य। दूसरे समय में तो आने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि सब संपन्न थे। तो कई लोग हमें कहते हैं नहीं, युगे युगे कहा है ना, भगवान तो हर युग में आता है। युगे युगे माना अगर चलो, या तो एक बार आता है, अति धर्म भ्रष्ट समय पर आता है। अच्छा चलो युगे युगे कहा तो चार बार आना चाहिए, चार अवतार होना चाहिए, लेकिन आज तो 10 अवतार है। उससे भी पेट नहीं भरा तो 24 अवतार कह दिया, उससे भी पेट नहीं भरा तो फिर सर्वव्यापी कह दिया। अब सत्य क्या है? एक बार आता है, चार बार आता है, 10 बार आता है, 24 बार आता है, आने की जरूरत नहीं, यही है। कितनी अज्ञानता है मनुष्य जीवन में, सही परिचय न होने कारण क्या क्या बोलते रहते हैं। इसलिए भगवान ने जब ये आदेश दिया कि समय की पुकार है, अब अगर ये रिवर्स करना है, उस सतयुगी दुनिया में जाना है, सूर्यवंशी बनना है, तो सबसे पहला सद्गुण जो है वो है पवित्रता, उसको धारण करो। इसलिए कहा यहां आपने वो चीज देखी, अगर पत्थरों के बीच में भी पेड़ निकल सकते हैं, हरे रह सकते हैं, तो कुछ तो वाइब्रेशंस का असर है कि नहीं है, उस प्योर वाइब्रेशंस का असर है। इस एरिया में आप देखो तो क्या वातावरण की शुद्धि है, कोई पोल्यूशन नहीं लगेगा आपको। यहां से स्टेशन जाएंगे ना नीचे आबू रोड, पोल्यूशन आपको महसूस होने लगेगा, दम घुटने लगेगा आपका, लगेगा कहां स्वर्ग से नीचे आ गए हम। महसूस करना आप कल जब जाएंगे तब महसूस करना। तो इसीलिए भगवान का जो आदेश है, और बहुत अच्छा चलता है जब पवित्र जीवन अपनाते हैं, तो बहुत सुंदर एकदम मानसिक रीति से व्यक्ति संतुलित हो जाता है, जीवन उसका बहुत सुंदर बन जाता है। लोग सोचते नहीं, थोड़ा अनुभव करके फिर आएंगे, पवित्र रहेंगे। अरे ठोकर खाके सुधरना ये समझदारी थोड़ी है। समझदार जो है तो समय की पुकार यही है। आज जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, एड्स, HIV पॉजिटिव जितना दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये बताता है कि ये समय विकृत, विकृति दर्शाता है। तो समय की भी पुकार है, पवित्र बनो, योगी बनो, आत्मरक्षा। आज जिस तरह से विमेन अब्यूज हो रहा है, बलात्कार जितना बढ़ रहा है संसार के अंदर, ये बलात्कार के अगेंस्ट आत्मरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो है पवित्रता की शक्ति। जब पवित्रता की शक्ति को अपनाते हैं तो जरूर है कि उस पवित्र वाइब्रेशन से अगर किसी के मन में अशुद्ध विचार भी आया, परिवर्तन होने लगता है।
यहां आपने सब बहनों को देखा, भय लगा किसी के अंदर, भयभीत होकर के जी रही हो ऐसा नहीं, इतनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। और वही अगर दुनिया में होते तो कितनी असुरक्षा महसूस होती। तो समय की ये पुकार है। रावण ने जब सीता को किडनैप कर लिया, ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका। सीता के पास कौन सा शस्त्र था अपनी आत्मरक्षा के लिए? एक घास का तिनका जो उठा करके उसने रख दिया, रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा। कौन सी शक्ति थी उसके पास? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। 14 साल की ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति जो थी, उसने उसको, रावण उसको स्पर्श तक नहीं कर सका। उठाकर ले जरूर आया है ना, क्योंकि इसने मर्यादा कहीं लांगी थी। ये एक गलती जो किया था उसके कारण रावण ने उठाया उसको, लेकिन उसके बाद जब अपने वास्तविक स्वरूप में वो आ गई, उसके बाद रावण उसको स्पर्श भी नहीं कर सका, अपने महल में नहीं रख सका। और सीता जी के पवित्रता की, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति ने सर्वनाश कर दिया, पूरी लंका जला दी। हनुमान जी की ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति ने लंका को जलाया है ना। समय की ये पुकार है कि आत्मरक्षा अगर चाहते हैं तो इस शक्ति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सतयुगी दुनिया की रचना का आधार विधि परमात्मा की यही है कि इस पवित्रता की शक्ति से ही नव विश्व का निर्माण होता है। भगवान को इसीलिए कहते हैं पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, तो पावन बनाएंगे तभी तो वह नई सृष्टि की रचना होगी। पवित्रता के बल से सृष्टि कैसे रची जाती है? दुनिया के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मेरी द्वापर युग के काफी समय के बाद, मिड द्वापर में जिसको कहा जाए, तो मिड द्वापर में 500 साल जैसे ही हो गए, उसके बाद जीसस का जन्म कैसे होता है? मेरी वर्जिन थी, वर्जिन मेरी, इसीलिए आप देखेंगे कई चर्च बने हैं, मदर मेरी का चर्च आपको में, उसका फादर कौन था पता ही नहीं, क्योंकि मेरी वर्जिन थी, कुमारी थी, और उस कुमारी को क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस ने का जन्म हुआ। यानी आज से 2000 साल पहले भी संसार में बिना भोग बल के उत्पत्ति होती थी, प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कौरवों की उत्पत्ति यज्ञ से हुई, पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई? राम राज्य के अंदर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई भोग बल से नहीं हुई थी, या तो यज्ञ से हुई, मंत्रों के बल से उत्पत्ति हुई, यही विधि बताई गई है शास्त्रों के अंदर, कहीं पर भी भोग बल नहीं बताया गया है, या मंत्रों का बल, यज्ञ के द्वारा फल जो प्राप्त होता है उसी से उत्पत्ति दिखाई गई है। और आज विज्ञान भी इस बात को कहता है कि हर वर्जिन के बोन मैरो में स्पर्म अपने आप तैयार होते ही है, और नारी अपने आप में संपूर्ण सक्षम है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए बिना भोग बल के। ये साइंस ने सिद्ध कर दिया है। आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे, आप टाइप करके पढ़ो इस बात को, ये साइंस का लेटेस्ट रिसर्च है। इसलिए कहा कि संसार भोग बल से नहीं चला है। ये तो द्वापर के बाद जब लोगों में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बनाया गया। बाकी संसार कोई भोग बल से उत्पन्न नहीं हुआ, दो युग बिना भोग बल के ही उत्पन्न हुआ है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्मा में ताकत नहीं रही तब इसकी यह हालत हो गई। और इसीलिए कई लोग भगवान को भी प्रश्न कर सकते हैं, तब भगवान ने एक सैंपल प्रकृति में भी रखा था कि एक मोर का पक्षी बिना भोग बल के आंसुओं के आधार से गर्भ धारण कर, लेकिन आज नहीं। आज मोर भी भोग बल को, क्योंकि दुनिया का प्रभाव है ना, वो वाइब्रेशन का प्रभाव उसके ऊपर भी आ गया, लेकिन एक समय था। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी अपने ताज में मोर पंख को लगाया कि जितनी पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना ही पवित्र ये पक्षी है। भारत का नेशनल बर्ड इसीलिए इसको कहा गया। जो श्री कृष्ण ने भी अपने मोर अपने ताज में उसको सुशोभित करके उसको सम्मान दिया, ये सम्मान था, और किसी पक्षी का नहीं लगाया। मोर पंखी क्यों लगाया गया? क्योंकि एक मोर ही वो पक्षी भगवान ने रखा था संसार के अंदर जो बिना भोग बल के उत्पत्ति करता था, लेकिन अब वो भी नहीं करता है। कलयुग का इतना बुराइयों का प्रभाव इस पक्षी पर भी आ गया है, लेकिन ये लास्ट जिसको कहा जाए सेंचुरी के अंदर ये हाल हुआ, नहीं तो मोर तब तक तो पवित्र पक्षी ही माना जाता था, है ना? इसीलिए सरस्वती का वाहन भी मोर दिखाया, हंस दिखाया, कहीं कहीं देवी देवताओं का वाहन मोर दिखाते हैं, है ना? ये सम्मान है, ये प्रत्यक्ष के देवताएं इसीलिए मोर पक्षी को साथ में रखते हैं। तो अब यहां आप आए हो तो कुछ तो प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि नहीं? कुछ तो प्रेरणा लेकर के जाएंगे ना, क्योंकि परमात्मा का जो आदेश है कि उसको हम मनुष्य आत्माओं से बस एक ही सहयोग चाहिए, जो भगवान सहयोग मांगे और दे देवे, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उसने सहयोग मांगा खाली, योगी बनो, पवित्र बनो, बस यही सहयोग चाहिए। संसार परिवर्तन के लिए ये बहुत बड़ा एक करिश्मा का कार्य करेगा आने वाले समय में, ये प्रत्यक्ष देखेंगे। इसलिए भगवान ये सहयोग मांग रहा है। भावार्थ ये कि भगवान ने हमको चुना है, आप यहां, आपको कई बार निमंत्रण दिया होगा बहनों ने, भाइयों ने, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार आपने क्या कहा था, बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो पहुंच जाएंगे। अभी जो आए किसकी मर्जी से आए, अपनी या उसकी? किसकी मर्जी से आए, अपनी या उसकी? अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? आए तो उसकी मर्जी से, अब जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? अपनी मर्जी पर या उसकी मर्जी पर? उसकी मर्जी क्या है समझ लिया? उसकी मर्जी पर चलने के लिए, क्योंकि भगवान आपको अगर लाया है यहां पर इस पवित्र भूमि पर, अगर हरेक का भाग्य नहीं होता है, आपके साथ आने वाले और भी थे, लास्ट मोमेंट कई लोगों की टिकट कैंसिल करनी पड़ी, और आप लोगों में से कई ऐसे भी होंगे दूसरे की टिकट पर आ गए होंगे। जिसको उसने चुना ना वो यहां पहुंच गया, समझा? आप चुने हुए हो, आप भगवान के सिलेक्टेड लोग हो, जिसको सिलेक्ट किया था उसने। मुझे याद आती है एक वो कहानी कि एक बार एक सेठ जी था, वो जा रहा था, और सेठ जी जब जा रहा था तो नदी क्रॉस करनी थी, पुल कच्चा था, आधे रास्ते में पुल पर आया और पुल टूटा, नदी में पानी बहुत था, बहने लगा, उसने कोई ऐसा पेड़ की डाली पकड़ लिया और लोगों को बुलाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे भाई ये सेठ जी डूब रहा है, तो कहा चल मैं बचाता हूं उसको। उसको कहा हाथ दो, हाथ दो। तो कहा हाथ तो नहीं दूंगा भाई, हाथ दो बचा लूंगा, तो हाथ तो नहीं दूंगा। तब उसको याद आया कि सेठ जी ने कभी देना तो सीखा ही नहीं था। कहा मेरा हाथ लो, पकड़ो। कहा हाथ पकड़ लूंगा, हाँ हाथ पकड़ लूंगा। हाथ पकड़ लिया। भावार्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि हम भी आपको कहते हाथ दो, पवित्रता का हाथ दो भगवान के इस कार्य में। आप कहेंगे हाथ देंगे नहीं, हाथ तो देंगे नहीं, तो हम कहेंगे लो तो सही, पकड़ो तो सही। ठीक है ना, कम से कम उभर तो जाएंगे, भाग्य तो अपना बना लेंगे कम से कम। तो इसीलिए सिलेक्टेड आत्माएं हो आप, भगवान की खास सिलेक्शन की लिस्ट में आप आ गए हो। इसीलिए वो एक कहानी है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने कहा, भगवान क्या देख रहे हो आप? तो कहा ये मेरी खास डायरी है। तो खास डायरी में क्या लिखा है? तो कहा इसमें कुछ नाम लिखे हैं। नारद ने पूछा किसके नाम लिखे भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हो गए, भगवान मेरा नाम तो पहला नंबर होगा, मेरे जितना तो कोई आपको याद करता ही नहीं है। तो भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा तेरा नाम तो पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं आप डायरी देख सकता हूं? कहा जरूर देखो। देखा अपना नाम पहला नंबर, बड़ा खुश हुआ। आगे देखने लगा हनुमान जी का नाम कहां है, देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। गए देखे तो हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे। वहां जाकर नारद जी प्रकट हो गए और कहा हनुमान जी ये सारा ढोंग बंद करो। कहा क्यों भाई? तो कहा अभी मैं भगवान की खास डायरी देख करके आया हूं, जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो उनको बहुत याद करते हैं, और मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और आपका नाम तो सारी डायरी में था ही नहीं। अब हनुमान जी जलने वालों में से थोड़ी थे। उसने कहा मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। नारद जी वहां से निकले, फिर घूमते घूमते आ गए भगवान के पास। तो भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा ये डायरी तो अलग है। कहा भगवान ये कौन सी डायरी है? कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। तो इसमें किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो हनुमान जी का नाम पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। भावार्थ ये कि दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन भगवान जिनको याद करे वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई होते हैं। आप वो पर्सनल डायरी वाले नाम है, आप सबका पर्सनल डायरी में भगवान ने नाम लिखा था, इसलिए वो यहां तक पहुंचा दिया उसने। अब यहां से दो रास्ते हैं आपके सामने, चुनाव आपको करना होगा किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर जा। भगवान ने याद किया पर्सनल डायरी में, आपको ले लिया, लेकिन अब उस पर्सनल डायरी में नाम रखना है या निकाल देना है, ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना यहां से जाने के बाद। ठीक है? अच्छा,
तो ये था समय के चक्र का महत्व, समय की मांग क्या है, समय क्या चाहता है उसको समझो, क्योंकि उसी को समझदार कहा जाता है। ओम शांति है।